Hallelujah. Praise the Lord. बाइबल के कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर मैं कभी प्रीच करना नहीं चाहता, हमेशा बचता हूँ, लेकिन आज की सुबह जब मैं प्रार्थना थोड़ी ही देर बैठा था, 5 मिनट और 7 मिनट, और मैं परमेश्वर से कह रहा था, परमेश्वर मैं लोगों को बहुत आपके प्रॉमिस की बातें, बहुत अच्छी बातें देना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है वो मेरे और आपके करेक्शन के लिए है। फिर मैंने सोचा साल भर कौन बिरयानी खाता रहता है, साल भर कौन नॉन वेज खाता रहता है, बीच बीच में करेला खाना भी अच्छा होता है। तो आज वचन ऐसे ही है जो मेरे और आपके सुधार के लिए है, यकीनन हमारे सुधार के लिए है। मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे किस स्थान पे लाके रोक दिया। सुने, बाइबल कहती है मरकुस रचे सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय, मरकुस रचे सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसकी 13वीं आयत से सुने आगे बड़े ध्यान से।
फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे।
बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह प्रार्थना करता है, फिर लोगों को नियुक्त करता है, 12 ऐसे लोग जो हमेशा उसके साथ साथ रहे आगे।
और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं शमौन जिसका नाम उसने पत्रस रखा।
साधारणतः ये वाला हिस्सा संडे स्कूल के टीचर्स यूज करते हैं जब बच्चों को 12 चेलों के नाम सिखाते होते हैं। 12 चेलों के नाम बताते बताते पवित्र आत्मा जब मरकुस से लिखवा रहा है तो 12 चेलों के नाम बताते बताते सबसे अंतिम में यहूदा को रखता है, और न केवल यहूदा से एंड करता है, लेकिन यहूदा की चर्चा पवित्र आत्मा कैसे करता है, या यहूदा की चर्चा पतरस के विषय बताता है, थोमा के विषय बताता है, आंद्रयास के विषय बताता है, बहुत सारे चेलों के विषय पवित्र आत्मा बताता है या बाइबल बताती है, लेकिन जब अंत हुआ, चेलों की संख्या का अंत और नाम का अंत हुआ, तो बाइबल यहूदा के लिए कहती है और यहूदा जिसने उसको पकड़वा भी दिया। आप पूरे समय बाइबल में पाएंगे यहूदा का जब भी जिक्र आया है कोई भी अच्छा स्टेटमेंट उसके नाम के साथ नहीं आया, एक भी जगह उसका उसके नाम के साथ अच्छा स्टेटमेंट नहीं आया। एक जगह और सुने, बाइबल कहती है यूहन्ना रचे सुसमाचार वो ईशान के पास नहीं होगा। यूहन्ना रचे सुसमाचार 12वां अध्याय उसकी 3री आयत से आगे, यूहन्ना 12:3 से आगे।
सुने बड़े ध्यान से, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। नेक्स्ट, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, जब भी यहूदा का नाम आता है उसके साथ ये उसकी चर्चा उसका टाइटल जुड़ जाता है, मानो उसका सरनेम ये हो। लिखा हुआ है और जो उसको पकड़वाने पर था कहने लगा, क्या कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। अब सुने, उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। उसने ये बात जब कही तो किसी को समझ नहीं आया वो ये क्यों कह रहा है। सुनने वाले बहुत से लोगों को ये लगा होगा, और लगा शायद 100% भी ऐसा हुआ कि सुनने वाले लोगों ने कहा कितना दयालु व्यक्ति है, गरीबों की चिंता कर रहा है, कंगालों की चिंता कर रहा है, कितना कितना सही व्यक्ति है ये, वो लोगों को लगा। लेकिन पवित्र आत्मा हम क्या कहते हैं उसके पीछे का मकसद क्या है, हम क्या कर रहे हैं उसके पीछे का मकसद क्या है, परमेश्वर वो मकसद जानता है। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा ने तो बड़ी अच्छी अच्छा स्टेटमेंट दिया, बोला ये तो क्यों वेस्ट कर दिया, कंगालों को दे देते, सुनने में अच्छा लगता है कंगालों को दे देते, लेकिन परमेश्वर ने इसको क्लियर कराया, बोला इसको कंगालों की चिंता नहीं है, इसको ये बात की चिंता है यदि कंगालों को दिया, क्योंकि वो खजांची है, सारा हिसाब किताब उसके पास होता है, सब कुछ उसके हाथ से जाता है। तो यहूदा की जब भी चर्चा होती है उसके साथ एक नेगेटिव बात जुड़ी होती है, या उसका चरित्र कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, यहूदा के साथ ये सब कुछ जुड़ा होता है। लेकिन यहूदा इस्करियोती जिसने उसको पकड़वा भी दिया। मेरा सवाल है, जब मेरी और आपकी चर्चा होती है, जब मेरे और आपके विषय लोग बात करते हैं, तब हमारे विषय क्या क्या चर्चा होती है? हम और यकीनन हम में से बहुत सारे लोग चर्चा का विषय होते हैं, हम में से बहुत सारे लोग चर्चा का विषय होते हैं, पर हमारी चर्चा होती क्या है? लिखा हुआ है पत्रस के बारे में, यूहन्ना के बारे में, सबका नाम लिखा हुआ है, लेकिन जब यहूदा पे आए तो बाइबल कहती है यहूदा जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तो उसने क्या किया, बाइबल बताती है। स्वर्ग उसको कैसे जानता है? स्वर्ग उसको यीशु मसीह के पकड़वाने वाले के रूप में इंटरप्रेट कर रहा है। और दुनिया उसको कैसे जानती है? दुनिया यीशु मसीह के चेले के रूप में उसको देख रही है, लेकिन स्वर्ग उसको कैसे देख रहा है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। जब स्वर्ग में हमारी चर्चा होती है, जब स्वर्ग हमें देखता है, तब हमको कैसे देखता है? यहूदा को स्वर्ग ने देखा, यीशु मसीह का पकड़वाने वाला। मैं फिर से कहूं, हम सबों की चर्चा, लेकिन क्या चर्चा होती? बड़ा गुस्सेल है, बड़ा झगड़ालू है, बात बात पे इसको इसका ईगो हर्ट हो जाता है, बड़ा डिसोबीडियंस है। हमारी क्या चर्चा होती है? हमारा नाम लिया जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा नाम लिया क्यों जाता है, क्या याद करके लिया जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से कहूं, हमारे विषय में जब भी लोग बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं, वो क्या हमारी क्या गवाही है लोगों के बीच में, लोग हमको कैसे याद करते हैं? यहूदा के विषय लिखा हुआ है, लोगों ने उसको याद, स्वर्ग ने उसको याद किया, यीशु मसीह का पकड़वाने वाला था। हमारे विषय में क्या? अविश्वासी योग्य है, हेर फेर करता रहता है, कोई भी काम तो भूल जाता है, लोग हमारे बारे में कैसे कैसे हमको याद करते हैं? सुनिए, बाइबल कहती है, एक आयत पढ़ें, उसके बाद हम आगे जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन, उसका 22वां अध्याय, उसकी पहली आयत, नीति वचन 22:1।
बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य।
बाइबल कहती है बड़े धन से अच्छा नाम। मेरे पास पैसा नहीं हो कोई बात नहीं है, आपके पास पैसा नहीं हो कोई बात नहीं है, आपके पास लग्जरीज लाइफ नहीं है कोई बात नहीं है, आपके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाओं की वस्तु नहीं है कोई बात नहीं है, बाइबल कहती है बड़े धन से अधिक चाहने योग अच्छा नाम है। मेरे पास एक ऐसा नाम होना चाहिए जिसकी जब चर्चा हो तो स्वर्ग खुश होए, जिसकी जब चर्चा हो तो लोग खुश होएं। मेरे नाम, बाइबल कहती है बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। हमारा नाम कैसा है लोगों के बीच में? हमारे वो नाम की बात नहीं कर रहा जो हम फॉर्म पे लिखते हैं, लोग हमें कैसे याद करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। नाबाल एक व्यक्ति हुआ जिसके पास बड़ा धन था, काम अच्छे नहीं थे, चरित्र अच्छा नहीं था, बर्ताव अच्छा नहीं था। सुने नाबाल के विषय बाइबल कहती है, पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय 14वीं और 15वीं आयत।
परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी,
ये उस समय की घटना है जब दाऊद को किसी बात की जरूरत पड़ी और दाऊद नाबाल के पास संदेश भेजता है और दाऊद कहता है अपने लोगों को भेजकर कि जब हम तेरे लोगों के साथ रहे तब हमने उनकी किसी भी प्रकार की हानि होने नहीं दी। हमने तो नहीं किया, वो एक अलग बात है, हमने हानि होने भी नहीं दी, हम उनके साथ साथ खड़े रहे, हमने उनको सब नुकसान से बचाया। और नाबाल ने ऐसा संदेश लेके, दाऊद ने ऐसा संदेश लेके नाबाल के पास भेजा और नाबाल ने सुना, बोला कौन है दाऊद, कौन दाऊद? आजकल बहुत सारे लोग अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं, मैं अपनी रोटी ऐसे ही लोगों को बांटता रहूं? और ये खबर दाऊद के पास आके उसको दी जाती है और दाऊद नाराज हो जाता है। दाऊद पूरी तैयारी में है कि नाबाल का आज अंत कर देगा, लेकिन उसी समय उसके सेवक नाबाल की पत्नी से बात करते हैं और नौकर उसके विषय में क्या बात करते हैं, सुने, तब सुने।
परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे।
क्या के लिए भेजा था? आशीर्वाद देने के लिए भेजा था।
और उसने उन्हें ललकार दिया,
हाँ?
परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे।
ये नौकर कह रहे हैं, उसके सेवक कह रहे हैं, बोले वो लोग हमसे बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे, हमारे साथ बहुत रिस्पेक्टफुली पेश आते थे, वो हमसे अच्छा बर्ताव रखते थे।
और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे,
हाँ?
तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ खोया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे।
रात दिन हमारी आड़ बने रहे, ना उन्होंने हमें लूटा, ना हमें लुटने दिया किसी और के द्वारा, वे हमारी आड़ बने रहे, वे सब समय हमारे साथ खड़े रहे, उन्होंने हमारे लिए भला 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 किया है। लेकिन अब सुने वे अपने स्वामी के विषय क्या कहते हैं।
इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए,
हाँ?
क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा,
हाँ?
वह तो ऐसा दुष्ट है।
वह तो ऐसा कौन है? ये उनका बॉस है, उनका बॉस है, वो उसके नीचे काम करते हैं। हमें भले बड़ा पद मिला होगा, हमारा रुतबा होगा, हमारा नाम होगा, लेकिन हमारे जो नीचे लोग हैं या हमारे साथ के जो लोग हैं, वो हमको कैसे याद करते हैं? इन्होंने उसको याद किया, इन्होंने उसके विषय गवाही दिया। और ये कौन लोग हैं? जो काफी समय उसके इर्द गिर्द रहते हैं, काफी समय उसके इर्द गिर्द रहते हैं, नाबाल के सेवक हैं, उसके आसपास रहते हैं, और उनके बीच में नाबाल की गवाही या नाबाल की टेस्टमनी क्या है? वह तो ऐसा दुष्ट है
कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता,
कोई उससे बात नहीं कर सकता। वह ऐसा व्यक्ति है, उससे कोई बात नहीं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा जिनसे आपको लगता है, रहने दो भैया, ये खुला हुआ इलेक्ट्रिक वायर है, इनको छियोगे और करंट लग जाएगा, इनको बोलोगे और बुरा लग जाएगा, इनसे कुछ कहोगे ये नाराज हो जाएंगे, ये जो कर रहे हैं इनको करने दो, इनको अपने हिसाब से जीने दो, इनको अपने हिसाब से चलने दो, इनसे कुछ मत बोलो, इनको करने दो जो कर रहे हैं। उसकी वही गवाही है। उसके नौकर उसके विषय ये बोलते हैं, उसके नौकर उसके विषय कहते हैं कि वो बात करने लायक व्यक्ति नहीं है। इसका सरल ट्रांसलेट कर दिया जाए ना, तो इसका मतलब यही है। आखिरी की लाइन सुने, वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बात नहीं कर सकता, उससे बात करने जाओगे भड़क जाएगा। मेरे को सिखा रहे हो, मेरे को बता रहे हो, मेरे को मालूम है क्या करना है, वो तो ऐसा व्यक्ति, उससे कोई बात नहीं कर सकता। आपने बहुतों को देखा होगा जिनसे आप बात नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अपनी नजर में हमेशा सही है, वो जो कर रहे हैं वो हमेशा अपनी नजर में सही है। आपने उनको प्यार से भी करेक्ट करने की कोशिश किया, वो भड़क जाएंगे, हमको मत सिखा, हमको मालूम है। बात ही नहीं किया जा सकता हमारी लोगों के। नाबाल की चर्चा जब नौकरों के बीच में हो रही है, उसकी ये चर्चा है। यहूदा के विषय जब चर्चा की गई, लेकिन उसने उसको पकड़वा दिया। हमारी क्या चर्चा होती है लोगों के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 90% लोग, 2-4-5% लोग होते हैं जो बड़ी हिम्मत करके बोल देते हैं आप कैसे हो। 90% लोग जानते हैं कैसा है, किनारे हट जाते हैं, रहने दो इसको जैसा है, कौन बोले, कौन झगड़ा करे। बाइबल कहती है कई कई बार ऐसे होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं, सुने बड़े ध्यान से, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका नाम सुनकर आपका मूड ऑफ हो जाता है। अरे उसकी बात मत करो यार, रहने दो उसकी बात मत करो। हमने अपनी क्या गवाही मेंटेन की है, हमने अपनी कैसी गवाही लोगों के बीच में मेंटेन की। कई बार आप देखोगे कुछ कुछ लोगों के विषय लोग बात भी करना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, उनका नाम ही सुन के उनका मूड ऑफ हो जाता है। हमने कैसा जीवन जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? और क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि यहूदा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, मैं और आप ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। सुने फिर से उसी हिस्से को, जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया, तब बाइबल कहती है मरकुस उसका 3:14 से आगे 13 से सुन ले। और
फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया,
हाँ?
और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया।
यीशु मसीह यहूदा को चाहता था और उसने उसको अपने पास बुलाया। यीशु मसीह मुझको और आपको चाहता है, प्यार करता है, उसकी मर्जी है कि हम उसके पास आए। उसने मुझको और आपको बुलाया है। हम ऐसे ही विश्वासी नहीं हैं, हम ऐसे ही चर्च में आके संडे सर्विस अटेंड नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने हमको बुलाया है, इसीलिए हम यहां पे आए हैं। बाइबल में लिखा है फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, और एक और दूसरी जगह लिखा हुआ है और उसने सारी रात प्रार्थना की, और सारी रात प्रार्थना करके सुबह 12 चेलों को चुन लिया, और उसमें यहूदा भी है। यीशु मसीह ने हमारे लिए आंसू बहाए हैं, हमारे लिए प्रार्थना की है, यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया है, और उसका रिजल्ट मैं और आप हैं जो यहां पे हैं। यीशु मसीह ने यहूदा को चुना था कि वो उसके पास आए, उसके साथ रहे, और
तब
उसको अपने पास बुलाया, और
वे उसके पास आए।
अपनी मर्जी से नहीं आए, यीशु मसीह के बुलाने से आए। मैं और आप, हम यीशु मसीह तक नहीं पहुंचे हैं, परमेश्वर हम तक पहुंचा है, उसने हमको बुलाया है, उसने हमको अपना बनाया है। नेक्स्ट लाइन,
तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया।
उसने मुझको और आपको नियुक्त किया है किस बात के लिए?
कि वे उसके साथ साथ रहे।
परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया है, सरल भाषा में मैं आपको सिखाऊं। परमेश्वर ने हमें वर्शिप लीडर होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम यीशु मसीह के साथ साथ रहें। हालेलुया। लोग हमें ऐसे नहीं जाने कि मैं एक प्रीचर हूं, लोग हमें ऐसे जाने कि व्यक्ति यीशु मसीह के साथ साथ रहता है। हालेलुया। चेलों को लोगों ने ऐसे ही जाना, पत्रस को एज अ प्रीचर नहीं जाना, चेलों को लोगों ने ऐसे नहीं जाना। सुने, बाइबल कहती है प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत, इस आयत को और फिर से एक बार पढ़ लें। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। उनका नियुक्त करने वाला कौन है? यहूदा का नियुक्त करने वाला कौन है? मेरा और आपका नियुक्त करने वाला कौन है? क्या परमेश्वर ने गलती कर दिया यहूदा को नियुक्त करके? परमेश्वर ने गलती नहीं किया, यहूदा पे निर्भर करता है वो कैसा जीवन जिएगा। परमेश्वर ने कोई गलती नहीं किया मुझे और आपको सेवा में बुला के, मुझे और आपको दाग की बारी में बुला के, मुझे और आपको विश्वासी होने के लिए बुला के, उसने गलती नहीं किया। अब सब कुछ हमारे ऊपर है, हम कैसे जीवन जीते हैं। उसने तो 12 को ही नियुक्त किया था, ऐसा नहीं कि उसने 12 को रखा था लेकिन यहूदा को बोला तू दूर ही रहना। उसने 12 को ही नियुक्त किया था। और सुने, और इसी को कंटिन्यू करें पहले।
तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे।
हाँ?
और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें,
और यीशु मसीह ने उनको काम भी दिया। ऐसा नहीं बोला कि 11 जाएंगे, यहूदा तू मत जाना। उसको भी वही सब कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रिविलेज मिला जो बाकियों को मिला। मुझे और आपको, हम शिकायत परमेश्वर से कर नहीं सकते कि मेरे साथ परमेश्वर आपने ये नहीं किया। परमेश्वर ने सबको मौके दिया है, परमेश्वर ने पश्चाताप के सबको मौके दिया है, परमेश्वर ने बदल जाने के सबको मौके दिया है, परमेश्वर ने परमेश्वर के साथ सही वॉक के लिए सबको मौके दिया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक सा प्यार किया, एक सा मौका दिया है, और उन्हें भेजा कि वे प्रचार करें
और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार,
और आपको बहुत सारी चीजों पर अधिकार भी दिया है, बहुत सारी चीजों पे अधिकार। यदि पादरी साहब दुआ करेंगे दुष्ट आत्मा भागेगा, तो एक विश्वासी भी दुआ करेगा और दुष्ट आत्मा भागेगा। परमेश्वर ने ऐसे कैटेगरी नहीं बना दिया, नहीं यही लोग करेंगे तो होएगा। परमेश्वर ने अपना हृदय और स्वर्ग सबके लिए खोला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको भी वो सब कुछ दिया जो यहूदा को मिला था, जो बाकी चेलों को मिला था। सुने, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत,
जब उन्होंने पत्रस और यूहन्ना का साहस देखा
याओ देखा,
और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण,
उन्होंने यह देखा कि ये कितना बोल्डली प्रीच कर रहे हैं, उन्होंने यह देखा कि बिना डरे परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, बिना डरे परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं, और इतनी गहराई से परमेश्वर के वचन की व्याख्या कर रहे हैं कि वहां के फरीसियों को भी वैसे नहीं बन रहा है। और उन्होंने यह भी देखा, और उसके बाद लिखा यह जाना कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्या देखा पहले, क्या लिखा है? उन्होंने जाना कि ये अनपढ़ का क्या मतलब होता है, जिसको अपना अनपढ़ है। वो ज्ञाता लोग थे, उनकी दृष्टि में ये अनपढ़ थे। फर्क नहीं पड़ता कि हम इस दुनिया में कितने हाईली एजुकेटेड हैं, फर्क पड़ता है इस दुनिया में लोग हमारे विषय और एक क्या गवाही देते। एक तरफ लोगों ने देखा ये अनपढ़ लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ और क्या लिखा है,
और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है।
हाँ?
तो आश्चर्य किया,
अचंभा किया, आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन फिर उनको रीजन समझ में आया,
फिर उनको पहचाना।
हाँ?
कि ये यीशु के साथ रहे,
उनको पहचाना। और क्या पहचाना, ये यार ऐसे ही नहीं है, ये इतने ऑर्डिनरी हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों काम कर रहे हैं। उन्होंने पहचाना ये यीशु के साथ रहे हैं। और परमेश्वर ने चेलों को क्यों बुलाया था, ताकि वे उसके साथ साथ रहें। हमारी पहचान वो नहीं है जो दुनिया हमें देती है, हमारी पहचान वो है जो स्वर्ग हमको देता है। प्रेज द लॉर्ड। गिदोन नामक व्यक्ति डरा सहमा हुआ बैठा था। स्वर्ग का परमेश्वर दूत को भेजता है और दूत से कहता है, उससे कहना जाके, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। इस दुनिया में हो सकता हमारी बहुत ज़्यादा पहचान ना हो, और इनकी भी नहीं थी, लेकिन इनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बना दिया केवल एक बात ने, कि ये यीशु मसीह के साथ साथ रहे थे। क्या मैं और आप यीशु के साथ नहीं रहते हैं? इनकी गवाही सुने क्या है, इनकी गवाही है, इनकी गवाही है। लोगों ने देखा एक तरफ अनपढ़ है, फिर लोगों ही नहीं कहा, इन्होंने नहीं कुछ बताया, लोगों ही ने कहा एक तरफ ये अनपढ़ है, एक हाथ ये अनपढ़ है, दूसरे हाथ अचंभित करने वाले कामों को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु के साथ रहे हैं। यदि मैं और आप अपने परमेश्वर के साथ रहना सीख चुके हैं, या सीख रहे हैं, या सीखने की लालसा रखते हैं, तो परमेश्वर है जो हमारी चर्चा अद्भुत रीति से कराएगा, और बहुत अच्छी चर्चा कराएगा। यहूदा की चर्चा की तरह नहीं, नाबाल की चर्चा की तरह नहीं। यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ रहना जानते हैं, तो हमको मालूम होगा हमको कैसे परमेश्वर के साथ रहना है, कैसे लोगों के बीच में पेश आना है। और वो थोड़ी देर का पेश आना नहीं होगा, वो थोड़ी देर का पेश आना नहीं होगा। हम वैसे ही होंगे, हम घर में भी वैसे ही होंगे। किसी एक परमेश्वर के दास ने कहा, हर एक विश्वासी का जिसमें पास्टर इंक्लूड है, हर एक विश्वासी का सबसे बेस्ट वर्जन चर्च में होता है। वर्जन समझते ना आप, बाइबल के कई वर्जन होते हैं, फिर कई चीजें मार्केट में आती हैं, संस्करण कह लें उसको हिंदी में, उसके बहुत सारी चीजें अलग अलग। ये वर्जन जैसे बाइबल का, हम कभी कभी अलग अलग वर्जन यूज करते हैं, इसमें यह लिखा है लेकिन इसमें यह लिखा है। तो हर एक व्यक्ति का, विश्वासी का बेस्ट वर्जन चर्च में होता है, बेस्ट वर्जन। जितना अच्छा वो चर्च में बन सकता है, उतना अच्छा वो बनता है। और सबसे वर्स्ट वर्जन घर पे होता है, सबसे वर्स्ट वर्जन घर पे होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं आपको कैसे जानता हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी फैमिली के लोग आपको कैसे जानते हैं। आपका बिहेव चर्च में बहुत अच्छा हो सकता है, घर में कैसा है, घर के लोग आपको कैसे जानते हैं, घर के लोग आपसे कैसे डील करते हैं, आपसे बात ही करने में वो डरते हैं कि भैया बात नहीं करना, या आप जो बोलते हैं बस उतने ही मान लेते हैं कि भैया इन्हीं की मान लो जिसमें शांति बनी रहे। हमको लोग कैसे, हमारा कौन सा वर्जन घर पे है? प्रीचर ने तो कहा वर्स्ट वर्जन घर पे है, सबसे रद्दी वर्जन हमारा घर पे है, क्योंकि घर के लोग, यहां हम कितनी देर के लिए हैं, डेढ़ घंटे के लिए, डेढ़ घंटा मैनेज करना आसान है। मैं बोलूं एक सुबह से शाम तक की प्रेयर में भी, प्रार्थना में भी, आराधना में भी मैनेज करना आसान है, घर पे हम कैसे हैं, वो हमारी मुख्य गवाही है। यहां पे डेढ़ घंटे मुझे मैनेज करना बहुत आसान है, मेरे घर में मेरे लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, मेरे घर के लोग मुझे कैसे जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतनी शांति आज तक मैंने नहीं पाई है जितनी अभी है। हमारा बेस्ट वर्जन चर्च में है, बेस्ट वर्जन होने ना दें। कि हम अलग अलग वर्जन के लोग हों। हम चर्च में कुछ, ऑफिस में कुछ, घर में कुछ, मोहल्ले में कुछ, मिनिस्ट्री में कुछ, पुलपेट पे कुछ, नीचे कुछ। मैंने हजारों प्रीचर देखे हैं, हजारों प्रीचर देखे हैं, पुलपेट पे कुछ, नीचे उतर के कुछ। हमको ऐसे जीवन नहीं जीना है। मैं बहुत सरल बात आपसे कह रहा हूं, अपने मन की बात आपसे। हमको वैसे जीवन नहीं जीना है। सिखा कुछ रहे हैं, जी कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, नम्रता के ऊपर 1.5 घंटे सरमन दे रहे हैं, नीचे उतर के फूले हुए हैं। नहीं, जब आप नम्रता के ऊपर सिखाते हैं तो नम्रता का जीवन जिए। जब आप प्रार्थना के ऊपर सिखाते हैं तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। हमको वो बनना है जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शांति के विषय सिखाते हैं, माफ कर देने के विषय सिखाते हैं, नीचे उतर के इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, इसको नहीं देखना, ये आया तो यहां घूम जाना, वो सब नहीं। जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है हमको वैसा जीवन जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन प्रेज द लॉर्ड धीरे होगा। हालेलुया, हमको वैसा जीवन जीना है जैसा परमेश्वर। हमारी चर्चा अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ लोगों के बीच में नहीं। एक दिन लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने सिंहासन पे था, परमेश्वर की सेनाएं आजू बाजू खड़ी थी, और पर शैतान वहां पे डोलता डालता घूमता घामता आ गया, और वहां अय्यूब की चर्चा होने लगी। स्वर्ग में मेरी और आपकी चर्चा होती है, ये बिब्लिकल है, ये बाइबल से है। शैतान आ गया और परमेश्वर ने बोला, तूने मेरे दास, तूने मेरे विश्वासी, तूने मेरे भय मानने वाले अय्यूब को देखा है। मतलब स्वर्ग हमको देखता है। स्वर्ग ने देखा अय्यूब का उठना बैठना, इसलिए अय्यूब आगे जाके कहता है अद्भुत बात। वो कहता है, बोलता है, तू मेरे पांव को काट में ठोक देता है और मेरी चाल चलन की निगरानी करता है। कितनी रहस्यमय बात उसने कहा। वो कह रहा है, एक तो तू मुझे काट पे ठोक देता है, जैसे यीशु मसीह को ठोक दी। काट समझते ना, वुडन लकड़ी। और अय्यूब कह रहा है, तू मेरे पांव को काट में ठोक देता है। अब जब किसी को काट में ठोक दिया तो वो चलेगा कैसे, उसको तो ठोक दिया गया है। फिर अय्यूब कहता, और तू मेरे चाल चलन की निगरानी करता है। मतलब यहां तो मैं शारीरिक रीति से बंध गया हूं, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है वो तू देखता रहता है। हालेलुया। यहां 1.5 घंटे हम कुर्सी पे मानो ठोक दिए गए हैं, हम हिलेंगे नहीं, वैसे ही रहेंगे। हमारे अंदर क्या चल रहा है परमेश्वर वो देखता, वो हमारा चाल चलन है। वो नहीं जो हम 1.5 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे दिखाते, वो नहीं, वो जो हमारे अंदर चल रहा है वो हमारा कैरेक्टर है, और परमेश्वर वो देखता रहता है। इसलिए बाइबल आप ध्यान से पढ़ें तो 100 मर्तबा पाएंगे परमेश्वर का आपको देखने का सेंटर पॉइंट आपका हार्ट है, आपका मन है। लिखा हुआ है, परमेश्वर की दृष्टि मन पे, नम्र लोगों पे लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ ही लोगों के लिए हालेलुया है। और सुने, बाइबल कहती है श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय उसकी 3 आयत।
तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है।
हाँ?
तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य।
तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। जब तक इत्र शीशी में है, जब तक इत्र शीशी में है, क्या वो पूरे घर को महका सकता है? नहीं महका सकता। लेकिन जब आप उसको उंडेल देते हैं, यहां यहां आने के पहले लोग करके आते हैं ना, जब वो उंडेल दिया जाता है तब आप किसी के बाजू से भी निकलते हैं तो उसको खुशबू आती है, वो खुशबू उसको अट्रैक्ट करती है। बाइबल में लिखा है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। मेरा नाम किसके तुल्य है? इत्र क्या करता है? इत्र से माहौल बदल जाता है, इत्र से खुशबू के कारण माहौल बदल जाता है। तो इत्र खुशबू फैलाता है, और खुशबू कितनों को अच्छी नहीं लगती बताएं? कितनों को अच्छी नहीं लगती खुशबू? सबको अच्छी लगती है। तो मेरा नाम खुशबू के समान है, और मेरा नाम बदबू के समान है। खुशबू माहौल बदल देती है, बदबू भी माहौल बदल देती है, बदबू भी माहौल बदल देती। मेरा नाम, मेरी टेस्टमनी, मेरी चर्चा है कैसी, जब वो होती है तो एक माहौल अच्छा होता है या लोगों का मूड ऑफ हो जाता है मेरा नाम सुन के, मेरे विषय बात करके। लिखा हुआ है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, मेरा नाम किसके समान है, आपका नाम किस। और नाम की जब बात होती है तो विशाल सोलोमन और फलाना और फलाने की बात नहीं होती है, हमारी गवाही की बात होती है। हमारा नाम कैसा है, हमारी चर्चा का विषय क्या होता है। बाइबल कहती है तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के समान है। आपको याद है मरियम जटामासी का आधा सेर इत्र ले आई और लिखा हुआ है यीशु मसीह के पांव पे उंडेल दिया, और जब उंडेल दिया तो उसकी एक खूबी लिखी हुई है, और सारा घर जहां वे बैठे थे खुशबू से भर गया। होने दें आपकी जब चर्चा हो पूरे घर का माहौल बदल जाए, आपकी जब चर्चा हो परमेश्वर का, परमेश्वर के प्रति ऐसा समर्पित जीवन हो सुनने वालों को आशीष मिले। होने दें, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल है। और सुने, बाइबल कहती है बड़े धन से अच्छा नाम चाहने योग्य है और तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के समान है। एक राजा हुआ, उसकी उसका अंत देख के, कल मैं बाइबल पढ़ रहा था, उसका अंत देख के मैं डर गया। सुने, बाइबल में लिखा है दूसरा इतिहास उसका 21वां अध्याय उसकी 3री आयत,
उनके पिता ने उन्हें चांदी सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े।
ये एक राजा था, जब उसका अंत हुआ तो उसने अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति को, क्योंकि वो भाइयों में बड़ा था, उसको राज्य दे दिया। सुने,
उनके पिता ने उन्हें चांदी सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़ वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज्य दे दिया।
हाँ, क्यों? क्योंकि वह जेठा था। लिखा हुआ है यहोराम को उसने राज्य दे दिया, क्यों? क्योंकि वह जेठा। आपको बहुत कुछ आपके घर वालों ने, सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया होगा, क्योंकि आप किसी कारण से वहां बड़े हैं, चाहे तो उम्र में बड़े हैं, चाहे तो पद में बड़े हैं, चाहे तो किसी एक बात में बड़े हैं, आपको कुछ मिल गया है। इसलिए नहीं कि हम में बहुत अच्छी खूबी है, इसलिए कि वो जो ऑर्डर है उसमें आप कुछ माने जाते हैं, उसको राज्य मिल गया क्योंकि वो बड़ा था। किसी किसी के घर में वही वही चलाते हैं, क्यों? क्योंकि हम बड़े हैं। समझे, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं आज। कोई कोई सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, और कुछ कुछ लोगों को दो चार रेफरेंस भी मालूम रहते हैं, तो कुछ भी बोलो तो बाइबल खुल के बताने लगते हैं, बाइबल में ही लिखा है। तो मेरे भैया, बाइबल में वो ही नहीं लिखा है, बाइबल में और भी बहुत कुछ लिखा है जिसे आप नहीं जानना चाह रहे हो, जिसे आप नहीं जानना चाह रहे हो। आपने सिर्फ वो आयतें उठा ली हैं जो आपके मतलब की हैं। बाइबल में लिखा है यहोराम को उसने राज्य दे दिया क्योंकि वह बड़ा था, और वो राजा बन गया, और वो अपने हिसाब से रूल करने लगा। लेकिन उसका अंत सुने, 20वीं आयत सुने,
वह जब राज्य करने लगा तब 32 वर्ष का था। हाँ? और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा। कितने साल?
आपका बर्ताव, संसार आपको बहुत कुछ दे देगा, स्वर्ग डिसाइड करेगा वो चीज आपके पास कितने समय रहनी है। सुना आपने इस अद्भुत बात को? संसार, परिवार, लोग, सोसाइटी, चर्च आपको बहुत कुछ दे देगा, लेकिन स्वर्ग डिसाइड करेगा वो चीज आपके पास रहनी कितने दिन है। शाऊल को राज्य मिल गया, लेकिन स्वर्ग ने डिसाइड किया इसके पास राज्य रहना कितने दिन है। लोगों ने उसको राज्य दे दिया, उसके पिता ने उसको राजा बना दिया। जब वह राज्य करने लगा तब वह 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा,
और सबको अप्रिय होकर जाता रहा।
कैसा? सबको अप्रिय होकर, सबके लिए सिरदर्दी था, सबके लिए सिरदर्दी था, लेकिन सबको अप्रिय होकर जाता रहा। अब हॉरिबल सुने,
उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई।
हाँ?
परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं।
राजा था पर राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। दाऊदपुर में मिट्टी जरूर दी गई पर राजाओं के साथ नहीं। और लिखा वो सबका अप्रिय होकर जाता रहा। आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा, कोई कोई लोग क्रिश्चियन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी जर्नल बात कर रहा हूं। कोई कोई लोग ऐसा जीवन जीते हैं जब वो चला जाता है तो लोग बोलते हैं अच्छा हुआ, सबका अप्रिय होकर, सबका अप्रिय होकर किसी का भी प्रिय नहीं बन पाया, ना फैमिली का, ना प्रजा का, ना साथ के लोगों का, ना दूसरे मंत्रियों का, किसी का प्रिय नहीं बन पाया, सबका ही अप्रिय होकर जाता रहा बाइबल के। होने ना दें, होने ना दें कि हम लोगों के अप्रिय व्यक्ति कहलाएं, होने ना दें कि लोग हमारी चर्चा सुन के दुखी हो जाएं, होने ना दें। कभी कभी आपने देखा होगा, यकीन है ऐसा फील किया होगा, आप बैठे हैं और कोई आता है माहौल बदल जाता है, आज कहां से आ गया यार ये, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और कोई कोई आता है और आपके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, हालेलुया कि ये आ गया यार, अब सब ठीक है, अब अच्छा आनंद होगा। और कोई कोई आता है तो आपको लगता है अब हम जाएंगे, अब हम जाएंगे क्योंकि ये आ गया है। ऐसा ना होने दें, आप ऐसे परमेश्वर की सुगंध को फैलाने वाले बने जब आप पहुंचे माहौल चेंज हो जाए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लोगों को प्यार करने वाले, लोगों को साथ में लेके चलने वाले, लोगों की परवाह करने वाले, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले, लोगों की सहायता करने वाले, लोगों के दुखों में खड़े हो जाने वाले, लोगों के आंसू पोंछने वाले, वो जीवन जिए जो यीशु मसीह हमारे लिए जी के गया है और हमारे लिए निर्देश दे के गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब तकलीफ में होते हैं, सुने बड़े ध्यान से, बहुत प्रैक्टिकल आज सारी बातें मैं कर, आप जब तकलीफ में होते हैं सबसे पहले आपके दिमाग में कौन आता है? और जो भी आता है, जो भी आता है, क्यों आता है? क्योंकि आपको मालूम है वो व्यक्ति मेरे लिए खड़ा हो जाएगा, वो व्यक्ति मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। और कोई कोई जो आपके बड़े क्लोज भी क्यों ना हो, कभी आपके दिमाग में नहीं आते क्योंकि आपको मालूम है वो मेरे लिए कभी खड़ा नहीं होगा, आपको मालूम है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है वो पास का पड़ोसी अच्छा है उस दूर रहने वाले भाई से, उस भाई से जो बहुत दूर रहता है, ना केवल डिस्टेंस में लेकिन यहां से बहुत दूर रहता है, वो पास का पड़ोसी अच्छा है जो मेरे लिए उपलब्ध हो जाता है। हालेलुया। लिखा हुआ वो सब का प्रिय होकर जाता रहा। और सुने एक आयत, बाइबल कहती है फिलिप्पियों उसका दूसरा अध्याय उसकी पांचवी आयत, फिलिप्पियों 2:5,
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था,
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था
वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।
और यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? मैं 1000 चीजें मैं और आप मिलकर उसमें ढूंढ सकते हैं, यीशु मसीह ऐसा था, यीशु मसीह ऐसा था, यीशु मसीह ऐसा था, यीशु मसीह, लेकिन ये हिस्सा यीशु मसीह के विषय क्या बताता है वो सुने। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही, और बाइबल ये नहीं कहती, बहुत सारे लोग बाइबल के दूसरे हीरोज को अपना हीरो मानते हैं, कोई मूसा को अपना हीरो मानता है, कोई दाऊद को अपना हीरो मानता है, कोई यूसुफ को अपना हीरो मानता है और कहते हैं मैं उसके जैसा, मुझे और आपको दाऊद और यूसुफ और किसी के जैसे होने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, हमें सिर्फ यीशु की तरह परमेश्वर ने बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि ये सब जिनको आप बड़ा हीरो मानते हैं, ये सबका गोल भी यीशु की तरह ही बनना था और कुछ नहीं था, ये कभी हमारे हीरो हो ही नहीं सकते, हमारा केवल एक ही नायक है, वही महानायक है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो अपने दिमाग से इस फितूर को बाहर जाने दें कि मैं दाऊद की तरह बन जाऊंगा। इनकी स्टोरी आपको पता है क्यों लिखी है? इनकी स्टोरी लिखी है कि इनके जीवन में जैसे जैसे काम हुआ, लेकिन स्वर्ग के महानायक ने इनको दशाओं से निकाल के लाया। तो यदि मेरे और आपके जीवन में भी ये निर्बलताएं, वो घटियां, वो सब चीजें आती हैं, तो स्वर्ग का महानायक हमें इन चीजों से बाहर निकाल के लाएगा। हमको इनके जैसे नहीं, लेकिन इनके जीवनों का कंट्रोल जिसके हाथ में था उसके जैसे बनने के लिए बुलाया गया है। यदि आप कहेंगे मुझे मूसा जैसे बनना है, तो मूसा खूनी था, फिर आधा क्यों बनते हैं, पूरा बन के दिखाएं? मूसा ने मर्डर कर दिया था, इसलिए मिस्र से वो भागा था, और मूसा शॉर्ट टेम्पर था, शॉर्ट टेम्पर समझते ना, बात है, हमको मत बताओ, शॉर्ट टेम्पर था, उसको बात पे गुस्सा आ जाता था। यदि आप दाऊद की तरह बनेंगे, तो दाऊद बत्शेबा के साथ पाप में गिर गया था, आप पूरे बाइबल उठा के देखें, कोई भी परफेक्ट नहीं है, केवल यीशु मसीह को छोड़, तो मुझे और आपको छोड़ इनकी तरह नहीं, या मैं इसको सरल भाषा में बोलूं आपको समझाने, हमें नायकों की तरह नहीं, हमें महानायक की तरह बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है यीशु की तरह बनने के लिए। बाइबल कहती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और कैसा स्वभाव था आपको मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर से सुने, आगे सुने,
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा।
अब इसका एक्सप्लेनेशन सुने,
वरन अपने
जिसने परमेश्वर के तुल्य होने पर भी या स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के जैसे बनाए रखना ना चाहा, अपने आप को रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर ने आपको बड़ा औहदा, बड़ा पद, बड़ा नाम, बड़ा रुतवा, बड़ा स्टेटस दिया होगा, लेकिन दुनिया के लोग उस दर्जे को पाकर जैसा बिहेव करते हैं आप मत करें, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। दुनिया के लोग सोचते हैं हमारी काबिलियत से यह हमको मिला है, लेकिन हमको मालूम है उसकी दया से हमको यह मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था, यीशु मसीह मेज पे से उठ गया, खाने पे से उठ गया। आपको मालूम है जब साधारणता कोई कोई बैल बजाता है, फोन करता है, कोई मिलने आता और आप खाना खा रहे हैं तो आप क्या करते हैं? 70-80% साधारणता क्या होता, आप बोलते हैं उनको बैठाओ, बोलना मैं खाना खा रहा हूं, फिर खत्म कर गया। यीशु मसीह भी खाना खा रहा है, चेलों के साथ मेज पे है, और लिखा हुआ है वो मेज पे से उठ जाता है। चेले खा ही रहे हैं, यीशु मसीह उठ जाता है, अपने कपड़े उतारता है, अंगूछा लपेटता है। आपको पता है वो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उन दिनों में दास लोग पूरे शरीर पे कपड़े नहीं पहनते थे, एक अंगूछे से अपने बदन को छिपाते थे। यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया, प्रेज द लॉर्ड, और क्या करने लगा, और फिर बैठ के खाने लगा, ऐसे लिखा है, और पानी लिया, एक एक चेलों के पांव धोने लगा, पांव धोने लगा, पांव धोने लगा, और फिर यहूदा भी आ गया। और यीशु मसीह को मालूम है ये मुझे पकड़वा देगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसके भी पांव धोना शुरू किया, और वो सब काम करने के बाद यीशु मसीह ने फिर से अपने आप को ड्रेसअप किया, बैठा और चेलों से कहा, तुमने समझा मैंने क्या किया है? चेले यीशु मसीह की तरफ बड़े ध्यान से देख, बोला मैं, तुम मुझे प्रभु कहते हो, मुझे गुरु कहते हो, और मैं हूं भी। अब समझो यदि मैंने गुरु होके तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी पांव धोना चाहिए। हालेलुया। और गलतफहमी में कुछ कुछ कलीसियाओं ने इसको ट्रेडिशन बना दिया, वो साल में एक बार, कई कई बार लोगों के पांव धोने, कांग्रीगेशन के पांव धोने लगते हैं। हमको साल में एक बार पांव धोने के लिए नहीं बुलाया है, हमको जीवन जीने के लिए बुलाया है, उस नम्रता का जो स्वामी ने दिखाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा,
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया,
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। शून्य का क्या अर्थ होता है? खाली कर देना, खाली कर देना। और किसी भी खाली चीज की वैल्यू है, आप जब मार्केट में परफ्यूम खरीदने, सेंट खरीदने, इत्र खरीदने जाते हो, वो आपको खाली बॉटल दे तो ले लोगे? खुशबू तो है ना उसमें भी थोड़ी सी, बॉटल खाली होने के बाद भी खुशबू देती है वो, तो क्यों नहीं ले लोगे? क्योंकि वो खाली है, जीरो है, किसी काम की नहीं। यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, ऐसा कर दिया मानो वो कुछ है ही नहीं। यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया
और
सरदार का रूप धारण कर लिया, स्वामी का रूप धारण कर लिया, क्या लगा, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आ गया। और सुने
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया,
हाँ?
और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली।
यहां तक आज्ञाकारी था, कि न केवल मृत्यु, लेकिन फिर पवित्र आत्मा ने लिखाया क्रूस की मृत्यु। क्रूस की मृत्यु क्यों? क्योंकि उन दिनों में क्रूस की मृत्यु अपराधियों को दी जाती थी, क्रिमिनल्स को दी जाती थी, ऐसे सबसे बुरा काम करने वालों को क्रूस की मृत्यु दी जाती थी। और यीशु मसीह ने मृत्यु बस नहीं ले लिया, लेकिन सबसे लज्जाजनक अपमानजनक मृत्यु ले लिया, ताकि मैं और आप यीशु मसीह में उद्धार पा सकें। प्रेज द लॉर्ड। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। अब सुने,
इस कारण परमेश्वर
बिना कारण के आपको कुछ भी नहीं दे देगा। परमेश्वर के पास जब आप आए तो आप ये सोच कर ना आए परमेश्वर ऐसे ही मेरे लिए सब कुछ करता जाएगा। यीशु मसीह ने एक ऐसा जीवन जी के दिखाया, परमेश्वर की बातों को पूरा करके दिखाया। इस कारण लिखा हुआ है, बिना कारण के नहीं। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। क्यों? परमेश्वर ने उसको जितना ऊंचा कर सकता था, मैं इसको इस तरह से कहूं, परमेश्वर ने उसको उतना ऊंचा कर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु जितना नीचे जा सकता था, यीशु उतना नीचे चला गया। आपकी ऊंचाई आपके निचाई पे निर्भर करती है। आप कितना नीचे जाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर एग्जैक्टली उतना ही ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। हमको दाऊद का सिंहासन दिखता है, हमको मूसा की महानता और लीडरशिप और आश्चर्यकर्म दिखते हैं, हमको यूसुफ का ड्रीम और वो सिंहासन दिखता है, लेकिन उस ड्रीम और उस सिंहासन के बीच की बातें हमको नहीं दिखती। ये सब बड़े गहराई से होकर गए, दुखों की गहराई से, अपमान की गहराई से, अपने आप को खाली कर दिया, जीरो कर दिया इन लोगों ने। किसी एक परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर एक व्यक्ति को उतना ही इस्तेमाल कर सकता है जितना उसने चोटें खाई हैं, जितना उसने परमेश्वर के लिए दुख उठाया है। यदि मैं और आप परमेश्वर के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, सुने इस अद्भुत लाइन को, यदि मैं और आप परमेश्वर के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है कि आपको मुर्दों में से जीवित करके वो नाम दे जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। आपको आपके परिवार में ऐसा बना देगा वो कि आप उनके बीच में श्रेष्ठ माने जाएंगे। आप जहां काम करते हैं, परमेश्वर वहां आपको ऐसा बना, लेकिन उसकी कॉस्ट पे करना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट पे किए बिना, आप जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो बिना दाम दिए मिल जाता है आपको? कोई कोई को मिल जाता है, क्योंकि उनकी पहचान रहती है। वो एक ही बार। हम जब कुछ परचेज करते हैं, जब हमको कुछ चाहिए होता है, तो उसकी एक कीमत अदा करना पड़ता है। यदि आपको परमेश्वर का फेवर चाहिए, तो परमेश्वर के रास्ते में चलने की कीमत अदा करने को तैयार होएं। एक ऐसा जीवन जिएं, एक ऐसा नाम बनाएं, एक ऐसी गवाही जो उंडेले हुए इत्र के तुल्य हो। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको क्या दिया? उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यदि आपको परमेश्वर से नाम चाहिए, परमेश्वर से पहचान चाहिए, तो परमेश्वर के लिए उन सब कामों को करने के लिए, परमेश्वर के लिए मैं बोलूं चर्च में भी उन सब बातों को करने के लिए, पिछले बार भी मैंने कहा था, ये अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है। हम परमेश्वर के लिए कितना डाउन जा सकते हैं। हम परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो फिर परमेश्वर भी हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट लाइन सुने, उसके बाद हम दुआ करेंगे।
कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है,
हाँ?
वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके,
हाँ?
और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
परमेश्वर ने यीशु को ऐसा बना दिया कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। वरन वो था ही वैसा, लेकिन फिर भी जब फिजिकल फॉर्म में इस दुनिया में आया, परमेश्वर ने उसको ऐसा उठाया, ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ था, और हर एक घुटना परमेश्वर ने उसके आगे झुकने के लिए दे दिया। हर एक जीभ से अंगीकार, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर कराएगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं और आप परमेश्वर के रास्ते में दुखों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो फिर अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी परमेश्वर को सौंप दें, अपने सेटल होने की, अपनी फैमिली की, अपने नाम की, अपने रुतबे की। परमेश्वर सब कुछ ही देख लेगा, वो सभी कुछ देख लेगा। उसने यीशु मसीह ने अपना 100% उसको दे दिया, और परमेश्वर ने अपना, यीशु मसीह परमेश्वर के लिए किस हद तक जा सकता था और वो गया। यीशु मसीह मृत्यु तक जा सकता था और यीशु मसीह मृत्यु तक परमेश्वर के बात को पूरी करने के लिए चला गया। फिर परमेश्वर की बारी आई, फिर परमेश्वर जिस हद तक जा सकता था और परमेश्वर किस हद तक जा सकता था और जा सकता है कि उसने यीशु को मरे हुओं में से जीवित कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके लिए भी सारी हद, जो हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं था कि कोई मर के 3 दिन बाद जी उठे, ये हुआ ही नहीं था। परमेश्वर ने यह करके दिखाया, परमेश्वर ने यह करके दिखाया। तो जो हुआ ही नहीं, परमेश्वर वो आपके लिए करके दिखा सकता है। अब आप सोचें कि आज तक हुआ क्या नहीं है, और उसके लिए खुद को प्रिपेयर करें, परमेश्वर वो आपके लिए करके दिखा सकता है। हालेलुया, आइए अपनी आंखों को बंद करें।